करने के लिए कौन सी सेवा की, जिसने सबसे अधिक श्रेष्ठ सेवा की वही सर्वोत्तम भक्त है। इसका हम धीरे क्रमशः हम इसको दिखलाएंगे, आप लोग इसको समझने की चेष्टा करें। अभी हम चित्रकेतु महाराज कैसे भक्त हुए और उनका चरित्र कैसा था संक्षेप में, और उरुकम प्रभु, श्रीमान उरुकम प्रभु जी, he will explain how Chitraketu Maharaj served Krishna and how he became a pure devotee. So you should explain in English, in a short. इस तरह से आप लोगों ने चित्रकेतु महाराज के उपाख्यान से ये देखा, इन्होंने असुर होते हुए भी असुर बने और उसमें भी प्रसन्न हैं, और वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं वाणी के द्वारा आपका गुणानुवाद सब समय करता रहूं और शरीर के समस्त इंद्रियों से आपकी सब समय सेवा में नियुक्त रहूं। कैसे, इसके लिए उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे बच्चा पशु पक्षी उसके पंख नहीं उगने पर भी मैया के लिए सब समय चिंतन करता है, मैया कब आएगी, माँ मुझे कब खिलाएगी। और बछड़ा गाय का, जब गाय चरने के लिए जाती है तो शाम को भूखा हो जाता है, उसमें अपने मैया को पुकारता है बड़े जोर से डां डां करके, ये बछड़े जैसा मैं पुकारूं और पक्षी जैसा मैं सब समय आपका चिंतन करूं, और जैसे प्रिया अपने विदेशी परदेश के लिए, परदेशी अपने प्रियतम के लिए जिस प्रकार से चिंतन करती है, उसका गुणगान करती है और आने पर उसकी सेवा करती है, उसी प्रकार से मैं तन से मन से वचन से शरीर से सब प्रकार से आपकी सेवा करूं, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए इस चित्र के तो उपाख्यान में दिखलाया और दिखलाया, संसार में आदमी जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा सुखी नहीं रह सकता, पुत्र के पिंड देने से ही पिता का कल्याण नहीं होगा, दूसरे के करने से कुछ नहीं होगा, अपने भगवान का भजन करना होगा। ये सब साधारण रूप में हम लोगों ने बतलाया। अब दूसरा एक चरित्र आता है भागवत में, बहुत ही सुंदर, महाराज भरत जी का। अभी हम लोग सोचते हैं कि एक पिता का पुत्र ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मणी होगा, यह बात ठीक नहीं, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा, ब्राह्मण का पुत्र अत्यंत दुराचारी होने पर भी वो ब्राह्मण ही रहेगा। पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, तुलसीदास जी का एक चौपाई है, इसका लोग गलत अर्थ लेते हैं, शुद्ध नहीं लेते। गीता में बतलाया गया चतुर्वर्णम व्यास सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से ये जातियां बनी थी हमारे भारतवर्ष के कल्याण के लिए, बड़ी सुंदर पद्धति थी। अब हम लोगों ने उसे ऐसे बिगाड़ दिया कि इससे अब हमारा कल्याण होना बड़ा मुश्किल है, इसको एकदम भ्रष्ट कर दी। पहले गुण के अनुसार में और योग्यता के अनुसार में भगवान की कृपा से वो ब्राह्मण के रूप में होता था। ब्राह्मण का पुत्र यदि गुण हो तो ब्राह्मण कहलाएगा। रावण का पिता विशस्रवा था, वो ऋषि और ब्राह्मण था, किंतु राक्षस कैसे हो गया, उसको ब्राह्मण का सम्मान नहीं दिया गया। दूसरी बात, एक वेश्या थी, उसका लड़का था जाबाला नाम, और एक ऋषि के पास में पढ़ने के लिए वेद अध्ययन के लिए गया। ऋषि ने कहा बेटा तुम कौन से गोत्र के हो, मैया से पूछा ना, तो वो गया मैया से पूछा जे हमारे पिता का गोत्र क्या था, हमारा गोत्र क्या है, ऋषि पूछ रहे हैं वेद अध्ययन कराने के लिए, हमको उपनयन दे करके तब वो पढ़ाएंगे। मैया ने कहा जिस देखो मैं युवावस्था में हमारे पास में बहुत से पुरुष आए और तुम किसका बेटा है मैं नहीं जानता, तुम ऋषि से कहना जे मैं जाबाला का पुत्र हूँ, मेरी मैया का नाम जाबाला है, मैं उसका पुत्र हूँ, बस यही कहना। वो ठीक ठीक जा करके सत्य बात उन्होंने कह दी। महाराज हम मैया ने हमारा कहा है कि युवा अवस्था में बहुत से पुरुष और लोग आए, किससे तुम जन्मा मुझे पता नहीं है, तुम ये ऋषि से कहना कि मेरे मैया का नाम जबाला है और उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। ऋषि सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, ओ ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी सत्य बात नहीं कह सकता, इसलिए तुमने ऐसी बात को भी सत्य हमसे कहा, इसलिए जरूर तू ब्राह्मण का बालक है। उन्होंने उसको उपनयन देकर के कहा कि तुम ब्राह्मण है और वेद अध्ययन कर, ऐसे गुण और योग्यता देखी जाती थी, सर्वत्र ऐसी बातें हैं, बहुत इसके प्रमाण हैं। तो कौन विषय पर बोल रहा है? भरत महाराज। तो उनके पिताजी का नाम ऋषभ देव था ना, उनके 100 पुत्र थे जिसमें 9 तो ऐसे जोगेंद्र हुए कि जाति पाति से सर्वथा ऊपर ब्रह्म ज्ञान वाले परम भागवत हुए, कवि हवि अंतरिक्ष इत्यादि। और एक भरत जो हुए ये भारतवर्ष के अधीश्वर क्षत्रिय हुए, और 81 जो हुए वे स्मार्त ब्राह्मण कर्मकांडी जो ब्राह्मण है ये, और 9 उसमें जो बचे वो 9 वर्षों के मालिक क्षत्रिय हुए। एक पिता के बहुत से पुत्र बहुत से जाति के ये कैसे हुए? ये तो भागवत में लिखा, रामायण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा। इसे गुण और कर्म के अनुसार में यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के भी उसका गुण ब्राह्मण का नहीं है तो ब्राह्मण का सम्मान जो पाने योग्य नहीं। चमार मोती का काम करता है, चमार का चाम का काम करता है, शराब पीता है, रावण जैसा है तो दुष्ट बेर उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। किसी नीच जाति में भी होकर के उसमें सब गुण हो यथार्थ में और भगवान का भजन करता है तो उसको शूद्र कुल में जन्म लेने पर भी उसको बहुत उन्नत स्थान दिया जाएगा, यह ब्राह्मण का भी गुरु हो सकता है। व्यास जी कौन जाति के थे? नारद जी कौन जाति के थे? शूद्रानी के गर्भ से तो पैदा हुए नारद। व्यास जी भी एक अस्परा के पेट से वो निकले थे, इसलिए ज्ञान के ऊपर में योग्यता के ऊपर में ही ये सब जातियां थीं। इसलिए भरत महाराज के पिताजी के इतने पुत्र होने पर भी विभिन्न विभिन्न प्रकाश है। इसमें भरत जी जो थे बहुत ही योग्य और भगवत भक्ति से संपन्न थे, क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों के भी ये गुरु होने लायक थे। इसके विषय में कैसा उनका चरित्र कैसे है इसमें शुभानंद ब्रह्मचारी जी संक्षेप में कुछ बतलाएं, सरल रूप से बतलाएंगे उनकी शिक्षाओं को।
गौरचंद्राय
जी ने कहा है पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, इसका तात्पर्य बहुत छिपा हुआ है। शास्त्रों में विप्र किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं, द्विज किसे कहते हैं, यह सब दिया गया। एक जगह पुराणों में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं। और संस्कारात् द्विजच्यते, गुरु के द्वारा पुरोहित के द्वारा जब उसका उपनयन इत्यादि संस्कार होता है तो उसको द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों का ही संस्कार होता है, इसलिए सभी द्विज हैं। किंतु वेद पाठात भवेत विप्र, वेदों का अध्ययन करने वाला जो है संस्कार के बाद में, पहले हुआ संस्कार द्विज बना, इसके बाद में क्या हुआ वेद पाठ अध्ययन करने लगा तब हुआ ये विप्र, और अंत में ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है ब्रह्म में विचरण करने वाला है उसको कहते हैं ब्राह्मण। यहाँ पर विप्र माने यदि कोई जिसका संस्कार हो चुका है और जो वेद पाठ भी करता है किंतु ब्रह्म नहीं जानता है, कोई भी बात नहीं जानेगा, इसलिए ऐसे विप्र को भी आदर कर। यहाँ पर ज्ञान गुणहीना का ये ब्राह्मण अभी नहीं अनुभव कर सका है किंतु सदाचार संपन्न है, पहला और दूसरा संस्कार भी हो चुका है किंतु वो ब्रह्म नहीं जानता है, ब्राह्मण भी नहीं हुआ है, ऐसे भी आदमी को जो कि उसके लिए चेष्टा कर रहा है उसका आदर करना चाहिए। तुलसीदास के विचारों का ये सार है, नहीं तो वो रावण को राक्षस क्यों कहते, क्यों कहते राक्षस, इसलिए ये सब बातें थी। चलिए
गुरवे गौरचंद्राय।
चित्रकेतु का और भरत जी का उपाख्यान सुना। ये सब शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, ये सब सनातन धर्म है। तो भी सनातन धर्म का भी उच्चा उपदेश नहीं, इसी को कहते हैं ज्ञान भक्ति, जो प्रहलाद इनके भट्ट महाराज जी के चरित्र में देखा किस प्रकार से इन्होंने साधन किया। साधन की उच्च अवस्था पर पहुंचने पर भी एक हिरण के प्रति थोड़ी सी आसक्ति आ गई, ये अच्छा काम है, प्राणी पर दया करनी चाहिए, दया करने गई, ये सात्विक दया है। तो भी भगवान के भजन करते समय जो किया उसे नीचे दो जन्मों के लिए, तीन जन्मों के लिए नीचे गिर गए, फिर उनको तीन जन्म लेना पड़ा। हिरण की चिंता करते करते हिरण बन गए। तो यदि कोई भगवान चिंतन करते करते भगवान का नाम करेगा तो क्या होगा, इसको चीज को समझिए, इसमें यह शिक्षा है। वो हिरण की चिंता करते करते हिरण बन गए, और यदि हम भगवत चिंतन करते 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 उनके भक्तों की चिंतन करते 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 शरीर को छोड़ेंगे, हम अब मनुष्य जन्म नहीं बल्कि हम उनके भक्तों की के रूप में हम जन्म लेकर के उनकी सेवा करेंगे। इसलिए मरते समय में भगवान का नाम होना चाहिए। गंगा जी का पानी देते हैं और चीज का चिंतन न आए। इस प्रकार से भरत महाराज का चरित्र सुना, थोड़े से छिटक गए, उनका जीवन ही ये बर्बाद हो गया, तीन जन्म लग गए। तो भी इसमें ये चीज देखते हैं कि भगवान की सेवा क्या थी। ये साधक हैं, हनुमान जी साधक नहीं, इनसे बहुत ऊंचे, प्रहलाद महाराज जी से बहुत ऊंचे, वो क्षण क्षण में भगवान राम की सेवा करते हैं। एक समय की बात है, सीता जी स्नानागार में थी और श्रृंगार कर रही थी स्नान करने के बाद। हनुमान जी बालक जैसे, उनके पुत्र जैसे वहां पर पहुंच गए। मैया क्या कर रही, बेटा मैं सुहाग ले रही हूं, सिंदूर ले रही थी। सुहाग, सुहाग मैंने क्या, ये सिंदूर पहनने से हमारे पति जीवित रहेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं विधवा नहीं हूं। अच्छा, इससे राम सुखी होंगे तो ठीक है। हाँ, उन्होंने किया, जब माता जी जब चली गई बाहर में तो वो श्रृंगार घर में पहुंच गए और सिंदूर को पानी से घोल कर और अपने सारे शरीर में पोत करके और राज दरबार में पहुंचे, राम के पास में। सभी लोग देख करके हंसने, सबने अरे ये क्या कर लिया हनुमान आज। हनुमान जी ने कहा, यदि मैया के यहाँ पर केवल श्रृंगार लगाने से, सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी सुखी रह सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा और चीज जीवित रहेंगे, तो मैं अपने सारे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। ये अखिल चेष्टा परायण। और एक दिन की बात है, एक दिन सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों ने विचार किया, ये हनुमान जब से आया तब से हमारी सेवा बंद हो गई, ये सब सेवा ले लेता है, हमको कोई सेवा ही नहीं देता, इसलिए हम लोग जितने दिन और रात की सेवाएं हैं हम लोग इसको बांट लें। और बांट लिया ऐसा कि हनुमान के जिम्मे एक भी सेवा नहीं रही। सवेरे से लेकर के फिर दूसरे सवेरे तक की सेवाओं को आठ भाग करके दो दो बार घंटे के हिसाब से उन्होंने बांट लिया। हनुमान के पास में कोई सेवा नहीं रही। हनुमान जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने रामचंद्र जी के पास में फटकने नहीं दिया। हनुमान जी रोने लगे और जाकर के प्रभु से, प्रभु हमारी सेवा सब तो इन लोगों ने बांट ली, अब हमको कोई सेवा ही नहीं दी, मैं क्या करूं। तो उनसे यदि कोई सेवा बच रही हो तो तुम वो करना। प्रभु मैं अब तो सब सारी सेवा ले ली। अच्छा ठीक है, तुम भी विचार करके कुछ सेवा करना हमें। तो प्रभु हम एक सेवा मांगते हैं, मैं आपके पास में नहीं आऊंगा, मैं बाहर घर के दरवाजे के बाहर में रहूंगा और जब आपको जम्भाई आए तो मैं चुटकी बजा के आऊंगा, बस ये आप सेवा दीजिए। जम्भाई आए ना तो राम राम कह करके चुटकी बजा लेना चाहिए, माने जम्भाई ना आए। जम्भाई आने से फिर क्या होता है, आलस्य होगा। आलस्य से क्या होगा, आप सुन रहे हैं ना, थोड़ी सी जम्भाई आई, इसके बाद में आलस्य थोड़ा सा हुआ, इसके बाद में कथा सुनने में रुचि रही होने से आप झट गिर पड़े, लाखों मन का पत्थर आपकी आंखों में चढ़ जाएगा, आप लाख चेष्टा करेंगे आप उसे उड़ नहीं हो सकते। वो नींद आ जाएगी। इसलिए आलस से ही नहीं करना चाहिए। जब भाई आती नहीं है, अरे प्रभु कभी भी आ जाए तो मैं यहाँ पर रहूंगा, मैं चुटकी बजा दिया करूंगा। अच्छा तो जाओ उन लोगों से पूछो, चारों से। चारों बड़े प्रसन्न हुए, जैसे उनको तो कभी जम्भाई आती नहीं है और हम लोग सेवा ऐसे करेंगे उनको जम्भाई नहीं आए, और इसलिए ये बाहर में बैठा रहेगा। जब जम्भाई आएगी, जम्भाई तो कभी आएगी नहीं, इसका काम भी नहीं रहेगा। हनुमान जी बाहर में चले गए। सोचा जब प्रभु को तो जम्भाई न जाने कब आ जाए, रात में हम तो फिर बाहर में हैं, तो पहले से क्यों नहीं चुटकी बजाऊं। बस चुटकी बजाने लगे और आराम को जम्भाई आने लगी। अब खाना पीना छोड़ गया, दिन वो दिन रात बस चुटकी बजाएं और ऐसा करें, और खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, पैर दबाना बंद हो गया, सभी काम ही उनका बंद हो गया। अब ये चारों कोई सेवा नहीं कर सके और वो चुटकी बजा रहे। भगवान के पास में ये गए, जैसे प्रभु आप कोई सेवा हम लोग नहीं कर रहे हैं, दिन रात चुटकी बजाता है और मैं आपको जम्भाई आती है, अब हम लोग क्या करें। अब तो जाओ उसके पास में और उसे क्षमा मांग करके और उसको कोई सेवा का भार दो, तब वो मानेगा, नहीं तो चुटकी बजाता रहेगा और हमको जम्भाती आते रहेगी। फिर उनके पास में गए, उनसे निहोरा किया, उनसे क्षमा मांगी और उनको भी सेवा का दिया जाए। अच्छा तुम पैर दबा देना प्रभु यदि थक जाए, उनको पानी ला देना और सब कुछ सेवाएं दे दी। ये है हनुमान जी की सेवा, कैसा सेवा करते हैं। एक बार सीता जी ने अपने गले का हार उनको दिया, हनुमान जी ने उसको दांत से काटा और उसको फेंक दिया। सारी मणियों को जो करोड़ों रुपयों की थी, मोतियां और हीरे थे, सबको काट करके फेंकने लगे। सब लोग हंस रहे हैं। किसी ने कहा, इसको क्यों काट रहे हो? तो मैं देख रहा था कि इसके अंदर में राम नाम लिखा है कि नहीं। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ लिखा है तो देखोगे? अच्छा देखो। बस ऐसे किया, देखा जो ऊपर से नीचे तक राम 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 रोई। ऐसे ही हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, किंतु इनसे भी निराले भक्त लोग हैं। कौन? पांडव लोग, अर्जुन इत्यादि। कैसे? भगवान ने, कृष्ण ने अपनी बहन की शादी भी कर दी है। किससे? अर्जुन से। सुभद्रा जी उनकी बहन है। और ये कृष्ण जो हनुमान जी के आराध्य हैं, ये आराध्य होकर के भी अर्जुन का घोड़ा चलाते हैं, रथ हाँकते हैं, और अर्जुन कहता है भाई जरा बीच में ले चलो रथ में। कभी सखा कहते हैं, कभी उनको आदेश देते हैं, कृष्ण उनका आदेश पालन करते हैं, और कभी कृष्ण उनको गले से लगा लेते हैं, ये कभी उनको लगा ले, एक थाल में बैठ करके खाते हैं, कभी सो रहे हैं एक पलंग पर, और अर्जुन का जिधर में पैर है वो कृष्ण के छाती पर से गया है, और उसको सुभद्रा जी और रुक्मिणी जी दबा रही हैं, और एक तरफ में कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती से जा रहा है और उसको द्रौपदी जी उसको चमर ढुला करके उसका सेवा कर रही हैं, और अर्जुन के रोम रोम से निकल रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों ही सखा हैं, हनुमान जी राम को गले से नहीं लगा सकते, उनके पलंग पर उठ करके बैठ नहीं सकते, सखा सखा नहीं कर सकते, जूठा नहीं खिला सकते, अर्जुन ये कर सकते हैं। किंतु इस अर्जुन से भी श्रेष्ठ भक्त लोग हैं। कौन? उद्धव जी हैं। उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, मंत्री हैं, सब प्रकार से उनके अपने निकट हैं। यदि कृष्ण को जरूरत हुई तो गोपियों को समझाने के लिए, माता पिता को समझाने के लिए अर्जुन को नहीं भेजा। थोड़ा सा महाभारत के युद्ध में उन्होंने विश्व रूप दिखलाया, हाथ जोड़ करके अर्जुन बोले, प्रभु मैंने आपको सखा कहा है, हमारे रथों को मैंने आपसे चलवाया है, और क्षमा कीजिए आप, मैं जीवन भर में आपको सखा नहीं कहूंगा, मैं आप ये विश्व ब्रह्मांड के प्रभु हैं, मैं ये भूल कर गया, आप मुझे क्षमा कीजिए। उद्धव जी इनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं कर सकते। गोपियों का मर्म जानने वाले कुछ हैं, इसलिए उद्धव जी को भेजा। कहाँ? ब्रज में, जबकि वो ब्रज से चले आए थे कृष्ण, आकर के मथुरा में थे या वहाँ द्वारका में थे, उसमें उद्धव जी को भेजा मथुरा से, किसलिए भेजा? मथुरा में किससे हम प्रेम की बातें करें, कोई प्रेम की बातें समझता नहीं है, इसलिए उद्धव को यदि गोपियों के स्कूल में भर्ती कर दूं और वहां जाएंगे और प्रेम का पाठ यदि पढ़ेंगे तब फिर लौट करके आएंगे तुमसे प्रेम की बातें करूंगा। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ास पंडित हो, प्रेम ये ढाई अक्षर है, सारी विद्याओं का सार है, यही भगवान का स्वरूप है, यही भक्ति का स्वरूप है। इसको जिसने प्रेम पढ़ लिया वो तो पंडित है, नहीं तो पंडित नहीं। कृष्ण ने कहा जिस स्कूल में मैं पढ़ा, राधा जी के स्कूल में, गोपियों के स्कूल में इसको भेजूं, वहां पर गए और गोपियों का यह अगाध प्रेम देख करके समझ गए, अरे वृंदावन में कृष्ण पूरे हैं, गोपियों के पास में है। ये मथुरा द्वारका में तो बहुत आंशिक रूप में है, वहां पर तो है ही नहीं है। और तब उन्होंने गोपियों की वंदना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु बंभिक्ष्ण सर, मैं गोपियों की चरण की वंदना करता हूँ जिसकी कथाओं से विश्व पवित्र हो सकता है। मैं वृंदावन में कहीं एक गुल्म और लता बनना चाहता हूँ जो गोपियों की चरण की धूली का स्पर्श मुझे हो जाए। आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, मैं वृंदावन की, वृंदावन में कहीं भी यदि गुल्म लता हो जाऊं और गोपियां इधर उधर चलती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, उस समय उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर लग जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं, मैं एक तीर्ण और गुल्म बनना चाहता हूं। वे तीर्ण और गुल्म बन करके वृंदावन में गोवर्धन के पास में, कुसुम सरोवर के पास में घास बन करके बने हुए हैं, ऐसी गोपियों की महिमा है। इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही प्रेम का आदर्श है, यही हमारा सनातन धर्म का आदर्श है जिसके वशीभूत कृष्ण हो जाते हैं। अब इसके संबंध में अभी रात हो गई, अब हम लोग कल इसके विषय में हम लोग कुछ बतलाएंगे। आप लोग गंभीरता से इन चीजों को समझ करके सनातन धर्म को समझने की चेष्टा करेंगे, ये है सनातन धर्म। गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोलो। बलि श्रीवृंदावन बिहारी लाल।